हुजूर महाराज ने कहा, जो लोग परमात्मा पर भरोसा करते हैं, परमात्मा उनकी बराबर मदद करता है। पंडित माता प्रसाद जी ने हुजूर महाराज को देखकर तुरंत पहचान लिया, अरे ये तो वही महात्मा है जिनकी सूरत में जनाब लाला जी साहब का चेहरा बदल गया था। दूसरे दिन उन्होंने महात्मा जी से बहुत नम्रता से हुजूर महाराज जी की सेवा में जाने के लिए कहा और दोनों सज्जन महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए। हुजूर महाराज ने पंडित माता प्रसाद पर भी अपनी कृपा दृष्टि की और अपनी शरण में ले लिया। पंडित माता प्रसाद हुजूर महाराज की सेवा में अंत समय तक आते रहे और हुजूर महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद वे श्रीमान लाला जी साहब की सेवा में आते रहे और अंत तक लाभान्वित होते रहे। श्री कृष्ण सहाय जी हितकारी वकील कानपुर, श्री कालिका प्रसाद साहब पेशकार, श्री चिम्मन लाल साहब मुख्तार, डॉक्टर कृष्ण स्वरूप साहब, बाबू राम कृष्ण साहब जमींदार और बहुत से सज्जन महात्मा जी के वसीले से हुजूर महाराज जी की सेवा में उपस्थित हुए, आपकी शरण ली और अपना जीवन सफल किया। हुजूर महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद ये सब सज्जन बराबर महात्मा जी की सेवा में आते रहे। एक बार श्रीमान लाला जी साहब बहुत सख्त बीमार हो गए, चलने फिरने से लाचार थे और खाट से लग गए। बीमारी के कारण आप इतने परेशान नहीं थे जितने परेशान इस वजह से थे कि आप हुजूर महाराज की सेवा में नहीं जा पा रहे थे। एक दिन आप डोली में बैठकर हुजूर महाराज की सेवा में पहुंचे और आंखों में आंसू भर लाए। हुजूर महाराज ने बड़े स्नेह से आपकी ओर देखा और बड़ी सहानुभूति से कहा, बेटे पुत्तू लाल घबराओ नहीं, देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से मूर्ख भोगे रोए। श्रीमान लाला जी कहा करते थे कि उस दिन से मेरी तबीयत ठीक होने लगी, कभी कभी हुजूर महाराज भी स्वयं दर्शन देने आने लगे थे, थोड़े ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गए। जो अभ्यास हुजूर महाराज ने बतला दिया था उसको श्रीमान लाला जी साहब बराबर मुस्तैदी से करते रहते थे। एक दफा जब आप नकल नवीस थे, आपको नकल करने के लिए एक मुकदमे का फैसला दिया गया जिसमें लगभग 58 सफे थे। आप अपने अभ्यास में मग्न थे और नकल भी करते जाते थे। जब 50 से कुछ ज्यादा सफे नकल कर चुके तो आपको एकदम ख्याल आया कि क्योंकि मेरा मन दूसरी ओर लगा था, नकल में जरूर बहुत सी गलतियां हो गई होंगी। आप इस ख्याल से बहुत घबरा गए और सोचने लगे कि अब इन कागजों के दाम कहाँ से दिए जाएंगे। बाद के सफे बड़ी होशियारी और एहतियात से नकल की। आप कहा करते थे कि नकल की जब असल से मिलान की गई तो मुझको ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ कि पहले 50 सफों में एक भी गलती नहीं थी और दूसरे 8 सफों में कई गलतियां निकली थी।
इसको हम स्प्रिंट का 70 पेज थे और पहले 70 पेज में, लेकिन जब तक गुरु की हस्ती काम करती रहेगी उसके ख्याल में आप काम करेंगे, गलती होने की संभावना, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती होती है, वो हर वक्त अपने गुरु को, तो इस तरह से एक कनेक्शन हो जाता। और जहां एक बार पे ये गलत ख्याल आया वहीं नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि साहब कितना पैसा लगेगा, क्या परेशानी होगी। ये एक बढ़ते गलत गिलास आया तो पूरी चेन बन जाती। इसीलिए जब आप हर वक्त गुरु के ख्याल में रहेंगे तो दूसरा खाली नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ इसीलिए गुरु के ख्याल पर, गुरु में लय होने को, गुरु की निष्ठा जुड़ने पर बड़ा, बहुत से लोग इतना ही पूजा समझते हैं कि दीक्षा मिल जाए। उनसे दीक्षा मिल गई हमारा काम खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। दीक्षा मिलने में इतना जरूर है, ईश्वर नाम का बीज बो जाता है और सिलसिले में आदमी दाखिल हो जाता। लेकिन अगर आप उसे निभाएंगे नहीं तो नेचुरली धीरे धीरे रिश्ता खत्म हो जाता। जैसे आपने देखा होगा कोई रिश्तेदार है, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद लोग नहीं गए तो रिश्तेदारी खत्म हो जाती। तो बिल्कुल जो चीजें दुनिया में करते हैं वही आप करते रहिए, वही परमार्थ है, बस उसका नजरिया अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है। 80% लोग यही करते हैं, सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमें दीक्षा मिली। तो एक्चुअली खाली उससे कि ईश्वर नाम का एक बीज बो दिया जाता है, सिलसिले में आपका दाखिला हो जाता है। एक लड़के ने स्कूल में दाखिला ले लिया, पढ़ाई नहीं तो बट नेचुरली फेल हो जाएगा, या गया ही नहीं तो या तो नाम स्कूल से कट जाएगा या उसको पढ़ाई में रुचि नहीं हो। तो हमेशा ये है कि आदमी को, कल उनका देख रहे थे साईं बाबा का, उन्होंने कहा भाई घोड़े को पानी पिला के दे दोगे तो पीना उसी को पड़े, ऐसा नहीं है कि कोई उसे पानी पिला दे, पानी दे सकता है, कर्म उसी को करने पड़े, कर्म के लिए हमेशा अभ्यास ही को करने पड़े।
हुजूर महाराज श्रीमान लाला जी साहब से उम्र भर में एक बार भी नाराज नहीं होने पाए। एक दिन हुजूर महाराज अकेले बैठे हौज के किनारे पानी से खेल रहे थे और पानी हाथों से इधर उधर उछाल रहे थे। श्रीमान लाला जी दर्शनों के लिए उपस्थित हुए, प्रणाम किया और दो ही मिनट बाद जाने की आज्ञा चाही। हुजूर महाराज बहुत खुश हुए और सोचने लगे, बेटे पुत्तलाल क्या बात है कि जो हम सोचते हैं वही तुम करते हो, जो हम सोचते हैं वही तुम करते हो। ये मोहब्बत की इंतहा है और जाहिर करती है कि दोनों के दिल कितने मिले हुए हैं। इस वक्त हम यही चाहते थे कि तुम चले जाओ और तुमने फौरन इजाजत जाने की तलब की। हमको ये तमन्ना ही रही कि हम एक दफा तो तुमसे नाराज होते। श्रीमान लाला जी साहब कहा करते थे कि जो हुजूर महाराज के दिल में आता था वह ज्यों का त्यों हमारे दिल में उतर आता था। उन्होंने बताया कि यह एक सिद्धि है, अगर कोई शिष्य अपने हृदय को अपने गुरु के हृदय के मुकाबले लगातार 72 घंटे और एक सेकंड के लिए भी गाफिल न रहे तो यह सिद्धि आ जाती है। और यह सिद्धि हमने अपनी शादी में सिद्ध की, जब हमको अपने पिताजी की आज्ञा के अनुसार महफिल में लगातार बैठना पड़ा था। लेकिन यह अमल उसी समय हो सकता है जब शिष्य अपने गुरु का फिदाई हो, आशिक हो और फनाफिल मुरीद हो, और शिष्य अपने गुरु में पूरे तौर पर लय हो चुका हो, फनाफिल शेख का दर्जा हासिल कर चुका हो और उसकी कुब्बते ख्याली इतनी मजबूत हो कि अपने ध्यान ख्याल से इतने बड़े समय में एक सेकंड के लिए भी इधर उधर ना जाए। सच तो यह है कि जब ऐसी हालत हो जाती है तभी तमाम तालीम जो गुरु के दिमाग में होती है शिष्य के दिमाग में अपने आप उतर जाती है। ऐसी हाल में दुई बिल्कुल मिट जाती है, मोहब्बत का तार जुड़ जाता है, जो एक सोचता है दूसरा उसको पूरी तरह महसूस करता है। गुरु समुद्र पार बैठा हुआ शिक्षा दे रहा है और शिष्य समुद्र के इस पार बैठा हुआ उस शिक्षा को बखूबी ग्रहण कर रहा है। दुई और दूरी बिल्कुल मिट जाती है। ऐसी हालत हो जाने पर, पर्दा कर जाने पर भी, अंतर ध्यान होने पर भी शिष्य बराबर अपने गुरु से फैजियाब होता रहता है। इसी को निस्बत या आंतरिक संबंध कहते हैं।
क्योंकि यही लोग कह सकते हैं कि हमारी गुरु से निस्बत जुड़ी और उसकी पहचान यह है कि डेथ के बाद भी उसे बराबर गाइडेंस मिलती रहती है। डेथ के बाद उसे बराबर गाइडेंस मिलती रहती है और वो उन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता चले जाए तो उतनी और गहरी निस्बत जुड़ जाती है। सबको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है, जिसे मुरीद कहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई सहारा नहीं लेना पड़ता। पहले जब गुरुदेव थे, भावजी थे, तो अगर आपने भावजी गाजीपुर में बैठे हो, कोई चीज कहा और यहाँ आके पूछा सिकंदराबाद में, तो गुरुदेव ने कहा हमारा ख्याल ऐसा कर लो। तुम के लड़के कहते थे एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी, हम लोग भी कहते थे कि ये दोनों जने आपस में तय कर लेते हैं क्या कहना है, क्योंकि ये निस्बत वाली बात तो समझ में नहीं आती थी। फिर एक इत्तफाक ऐसा पड़ा जब उसमें आपने बताया कि देखो बेटे, इसलिए ऐसा हो गया था कि हर वक्त तुम हमारे ख्याल में रहते थे और हम तो पूजा करने जा रहे, तुम्हारा परेशान चेहरा देख लिया तो प्रेम के बस पर रुके नहीं, बस पर बैठे और सीधे चले आ रहे, और मुश्किल से 15-20 मिनट हॉस्टल में रुके, उसके बाद वापस चले। तो जब भी होगा आपकी अगर नस्बत जुड़ जाए, तो फिर उस गुरु की डेथ के बाद भी आपको बराबर गाइडेंस मिलती रहती है। बस शिष्य का काम यह है, हूबहू फॉलो करते चले, हूबहू फॉलो करते चले जाइए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, नहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट हो जाएगी। और ये हमारे सब बुजुर्गों ने करके दिखाया, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके याद करने का मतलब ये है किस तरह से हम उनके पद चिन्हों पर चल के अपने जीवन को सफल कर सकते, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है।
आप कहा करते थे कि सब लोग हुजूर महाराज के पांव दबाया करते थे और हमारी भी बहुत इच्छा थी कि मैं आपके पांव दबाएं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि हम पांव दबा सकें, क्योंकि हमारे हाथ बहुत सख्त थे और हुजूर महाराज के पैर बहुत ही मुलायम। एक बार सेवक लेखक एक बार सेवक महात्मा जी के साथ था। आप दिल्ली में चांदनी चौक में किसी काम से पधारे और घंटाघर से फतेहपुरी की तरफ रवाना हुए, फिर वहां से सब्जी मंडी की तरफ मुड़ गए। बर्फ खाने तक बराबर चलते गए, सेवक पीछे पीछे साथ था। सेवक का ख्याल था कि आप दिल्ली इससे पहले भी पधारे होंगे, यहाँ के रास्तों को जानते होंगे और किसी खास काम से इस तरफ को जा रहे हैं। बर्फ खाने पहुँच कर जो घंटा घर से करीब 1.5 मील की दूरी पर है, महात्मा जी ठहर गए और सेवक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया? मैंने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। आपने कहा, उन बुजुर्ग को देखो जो सामने जा रहे हैं, उनकी शक्ल व सूरत श्री हुजूर महाराज से बहुत मिलती है, उनको देखता हुआ मैं यहाँ चला आया। इतना कहकर नेत्रों में जल भर लाए। आपको हुजूर महाराज से बहुत प्रेम था, उनके विषय में बहुत कम बातचीत करते थे और जब कभी बातचीत करते सारा शरीर प्रेम के आवेश में कांपने लग जाता और बात को आंसू आ जाते थे। एक बार आपने श्रीमुख से कहा, हमारी आत्मा उस आनंद के लिए बेचैन है जो हमको अपने पीर की सोहबत में मिलता था। एक समय श्रीमान चाचा जी साहब मुंशी रघुवर दयाल जी कह रहे थे कि श्री हुजूर महाराज महात्मा जी का बहुत अदब करते थे। जब कभी आप बच्चों से खेलते होते और लाला जी साहब आ जाते तो हुजूर महाराज खामोशी अख्तियार कर लेते और दूसरों को भी चुप रहने का इशारा कर देते। इत्तेफाक से लाला जी साहब ने ये शब्द सुन लिए, आप चाचा जी साहब पर बहुत नाराज हुए और फिर देर तक बहुत बिलख बिलख कर रोते रहे। सेवक को इजाजत आचार्य पर पदवी देते समय आप हुजूर महाराज का खत पढ़ने के बाद उनकी याद करके फूट फूट कर रोते रहे। जब कभी भी आप महाराज जी का जिक्र करते हमेशा प्रेम का आवेश हो जाता। यद्यपि आप बहुत जप्त करने वाले इंसान थे, लेकिन फिर भी उस प्रेम के वश के वेग को नहीं बर्दाश्त कर पाते थे और आंखों में आंसू छलक आते थे। कभी कभी तो उनकी याद में अकेले जोर जोर से रोने लगते और हिचकी तक बन जाती थी। जो तनख्वाह महात्मा जी को मिलती थी वह आप गुरुदेव की सेवा में पहले भेंट कर देते थे और गुरुदेव किसी के हाथ से उनके घर भिजवा देते थे। एक बार हुजूर महाराज के यहाँ कई रोज से उपवास चल रहा था क्योंकि घर में भोजन की कोई सामग्री नहीं थी और यही हालत महात्मा जी के यहाँ भी थी। आपके पास किसी जगह से एक मनी ऑर्डर के 15 रुपए आए, आपने उनमें से 10 रुपए आपने उनमें से 10 रुपए महात्मा जी के यहाँ भिजवा दिए और 5 रुपए अपनी माता जी के पास भिजवा दिए ताकि भोजन आदि का सामान मंगा लें। शाम को जब आप घर आए और खाने का इंतजाम न देखा तो पूछा, अभी तक खाना क्यों नहीं बनवाया? ने उत्तर दिया कि जो रुपया तुमने भेजा था वो हमने दूसरे घर, बड़े घर महात्मा जी के घर भिजवा दिया क्योंकि वहाँ बहुत ज़रूरत थी। आप यह सुनकर हंस पड़े और बहुत खुश हुए और कहा, ये तुमने बहुत अच्छा किया, और उस रोज उपवास ही रहा। एक दिन श्रीमान लाला जी साहब ने हुजूर महाराज से निवेदन किया कि मैं आपका हूँ, अगर आज्ञा हो तो जाहिर हुजूर भी आपका हो जाऊं। आपने जवाब दिया कि ऐसा बेहुदा ख्याल तुम्हारे दिल में कैसे आया और ऐसा ख्याल कभी दिल में मत लाना। मजहब, धर्म, रस्मों रिवाज का नाम नहीं है, यह सब शरीयत है, कर्म कांड है, और शरीयत का दारोमदार मुल्की और मजलिसी हालतों पर महफूज निर्भर करता है। मजहब दरअसल वास्तव में हकीकत और मार्फत का नाम है जिसका ताल्लुक केवल आत्मा से है जो सबको की एक है और इन बातों से बहुत ऊंची है। जो जिस मुल्क और मजहब में पैदा हुआ है उसका फर्ज है कि मुल्क और मजहब के रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी बसर करे। तुम हिंदू हो, तुमको हिंदुओं के धर्म शास्त्र की पैरवी करनी चाहिए और मुझको मुसलमान होने की वजह से मुसलमानी शरण की। तुमको इन ओछी बातों से बहुत ऊपर उठना चाहिए। मजहब फराग दिली सिखाता है ना कि तंग दिली। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने आप को आग समझना, वंचित समझ, यह है बेतासुबी की शान। हुजूर महाराज एक उच्च कोटि के संत थे, बहुत सादा स्वभाव, बहुत खुशपोश, स्वच्छ वस्त्रधारी और पाक साफ रहने वाले, हंसमुख और बड़े दयालु। आपको तासुब छू भी नहीं गया था। मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब आपकी दृष्टि में एक थे और सभी वर्ग के लोग आपके शिष्य थे। जब कभी लाला जी साहब के घर से खाना थाली में आता था, आप स्वयं वहां पधारते तो आप अपने बर्तनों में भोजन रखवा लेते और पत्तल में रखवा लेते। कभी कभी हाथ पर रखकर भी खाना खा लेते थे और पानी चुल्लू से पी लेते। प्रसाद के मौके पर हिंदुओं के लिए प्रसाद हिंदू से मंगा लेते और उसी से बंटवा देते। वे कहा करते थे कि हर मनुष्य को अपने धर्म के नियमों का पर चलना चाहिए। यद्यपि आपके कई मुस्लिम शिष्य भी थे परंतु आपने लाला जी साहब को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ये एक ऐसा अद्भुत उदाहरण है जबकि एक सूफी ने बिना धर्म परिवर्तन कराए अपनी सारी आध्यात्मिक पूंजी एक हिंदू को दे दी।
अजमेर शरीफ के जो थे इनके भी दोनों शिष्य हिंदू थे, लेकिन पहले इन्हें धर्म का परिवर्तन कराया। गुरु नानक देव के भी शिष्य थे, तो इन सब ने जितने थे रिलीजन खाली एक, और इसीलिए उनकी उसमें है फकीर बेनवा के वास्ते, यानी उनका कंपेरिजन आप किसी से कर ही नहीं सकते हैं कि आइडियल थी। उनने कभी उनको हमने नहीं देखा। एक मौलवी अब्दुल गनी साहब को देखा एक मरता, हम लोग गए थे तो गर्मी के ही दिन थे, ताऊ जी थे, बहू जी थे, हरि भाई साहब थे, उनके लड़के हम थे, सेठ भाई साहब थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो रस्ते भर तो एक तो गर्मी में पिस्तल लाद के गए थे। रास्ते भर ये सोचते जाएं कि उनके यहाँ खाना कैसे मिलेगा मुसलमानी। नहीं, जो ही पहुंचे तो देखा था उनने सल भाई को बुलवाया था, इससे वो पहले ही से कहला चुके थे कि भाई ये लोग आ गए, इनको पूरी और वो कर। तो अगर कोई शख्स, ये खाली मौलवी साहब का सर था, धर्म परिवर्तन या धर्म को बदलने की कहते हैं, तो उसका मतलब ये उसमें तासुब है, और वो भी इन्हीं सब चक्करों में। हमारा एक है कि मनुष्य हैं हम, हमें मतलब नहीं कि वो हिंदू है, मुसलमान है, पंडित है, कायस्थ है, कौन, बस वो मनुष्य है, वो वही ईश्वर का अंश है जैसे हम हैं। और क्योंकि ईश्वर के अंश होने के नाते हमें उससे उनसीयत होनी चाहिए, अगर नहीं है तो ये पाखंड है, धर्म है। और ये उन बुजुर्गों ने साबित करके दिखाया।
आप सबके साथ बराबरी का बर्ताव करते इम्तियाज बिल्कुल पसंद नहीं था। सबके साथ एक फर्श पर बैठते, तकिया वगैरह नहीं लगाते थे, अपने शिष्यों को की ओर कभी टांग पसार नहीं बैठते, और ऊंची जगह पर भी कभी नहीं बैठते थे। जब कभी सत्संगी भाइयों को अपने सिरहाने बैठाते और अगर कोई ना बैठता तो नाराज होते, सबके साथ चलते। आगे आगे चलना आपको बहुत नापसंद था। जो सब खाते वही आप खाते। आप बहुत कोमल स्वभाव के थे, जो दिल में आता फौरन कह देते। एक बार एक रईस साहब जो हैदराबाद में एक उच्च पद पर नियुक्त थे, बड़ी खुशामद से आपको अपने साथ ले गए और वहाँ पर बड़े आराम से रखा, लेकिन सत्संग में बहुत कम आते थे। आपने रहना पसंद नहीं किया और वापस चले आए। कहने लगे, हम आराम के ख्वाहिशमंद नहीं हैं, हम तो टूटने वाला दिल ढूंढते हैं। हम तो इस ख्याल से चले आए थे कि शायद हमारी सोहबत से आपको कुछ फायदा होगा। आपकी पाठशाला में एक विद्यार्थी बहुत सुंदर और हंसमुख था। आप पर भक्ति का आवेश हो गया और आपने उस लड़के से कहा, हंसना बंद करो, लेकिन उसका चेहरा ही हंसमुख था। आपने दोबारा तिबारा कहा, फिर उसको मारना शुरू किया। आप बराबर मारते रहे और वो लड़का खामोश खड़ा पिटता रहा। इतने में आपकी वो हालत जाती रही और आवेश गायब हो गया। आपको ये देख कर कि आपने लड़के को बेकसूर मारा बहुत दुख हुआ, और सोच कर कि मैंने क्यों बेकार बेकसूर इस बच्चे को मारा, नेत्रों में जल भरा है। फिर कहने लगे, अल्लाह ताला इस लड़के को हमेशा ईमान पर कायम रखें, और अपनी मोहब्बत से अल्लाह ताला इस लड़के को हमेशा ईमान पर कायम रखें और अपनी मोहब्बत से माला माल कर दे। आपकी दुआ कबूल हुई, वह लड़का आपकी शरण में आ गया और उसने ब्रह्म विद्या प्राप्त की और अंत समय तक पूरे ईमान पर कायम रहा। एक रईस के सुपुत्र आपके पास फारसी पढ़ने आते थे, लेकिन पढ़ते पढ़ाते खाक न थे। एक रोज हुजूर महाराज ने कहा, बरखोदार अपना मतलब बताओ, क्यों आते हो? पढ़ना पढ़ाना तो तुमको खाक है नहीं, हम खूब जानते हैं। वो पहले तो चुप हो गया, थोड़ी देर बाद उसने निवेदन किया कि जो कुछ आपने कहा है वो सही है, मैं एक लड़की पर मोहित हूँ और चाहता हूँ वो मुझसे शादी कर ले। आप कोई मंत्र मुझे बता दीजिए जिससे मैं अपने ध्येय में सफल हो जाऊँ, यही स्वार्थ मेरा आपकी सेवा में आने का है। यह सुनकर हुजूर महाराज कुछ समय तक चुप हो गए। एक दिन चांदनी रात थी, सत्संगी भाई बैठे हुए थे, रईस साहब के सुपुत्र भी वहीं मौजूद थे और महात्मा जी भी वहीं वहीं पास में बैठे हुए थे। हुजूर महाराज बहुत साफ सफेद कपड़े पहने हुए थे, इत्र लगा हुआ था जो आप अक्सर लगा लेते थे, चमेली बेला वगैरह के फूल पास रखे हुए थे। एकाएक आप उन सुपुत्र को संबोधित करके बोले, बरखोदार हमारी ओर देखो, क्या वो औरत हमसे भी ज्यादा खूबसूरत है? आप उस समय बड़े खूबसूरत दिखाई पड़ते थे। साहबजादे ने आपकी तरफ देखा और देखते ही देखते रह गए, मानो कोई पत्थर की मूर्ति हो। उस रोज से उनकी हालत बदल गई। उस स्त्री के प्रेम के बजाय हुजूर महाराज की सोहबत ने घर कर लिया। महाराज जी पर भी उसका बहुत गहरा असर पड़ा। आप अक्सर कहा महाराज जी पर भी उसका बहुत गहरा असर पड़ा। आप अक्सर कहा करते थे, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, वे खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। तेरी मोहब्बत के तीर ने मेरे दिल को बेध डाला है, उसकी वेदना कोई मुझसे पूछे, अगर ये पार हो जाता तो ये चुभन कैसे रहती, अगर ये पार हो जाता तो ये चुभन क्यों कर रहती। नवाब शमशाबाद के एक रिश्तेदार एक स्त्री पर मोहित थे और उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो स्त्री तैयार नहीं थी। वे सज्जन आपसे सहायता लेने के लिए आए। आपने एक अभ्यास करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद बजाय उस स्त्री की मोहब्बत के आपसे मोहब्बत हो गई। गुरु दीक्षा भी ली और अंत समय तक रास्ते पर कायम रहे। ये आपकी संगत का असर था। इस तरह आपने बहुत सी जिंदगियों को तबाह होने से बचा लिया। तहसील कायमगंज में एक हिंदू सुनार दफ्तर में महात्मा जी के साथ क्लर्क थे। उनके भतीजे किसी महात्मा के शिष्य थे जिन्होंने उनको कोई अभ्यास करने के लिए बता दिया था। वे सज्जन अभ्यास को बड़ी चाव से विधि पूर्वक करते रहे, लेकिन अचानक उनकी काम शक्ति जाग उठी। उन्होंने उसको दबाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सफलता नहीं हुई। दिनों दिन बढ़ती गई। उनके गुरुदेव या तो उस समय जीवित नहीं थे या उसका इलाज नहीं कर सकते थे। हालत खराब हुई। यहाँ तक कि इधर उधर और दौड़ने लगे। ये देखकर उन्हें कोठरी में बंद कर दिया गया। सब लोग परेशान थे। समझ में नहीं आता था कि क्या करें। उन सज्जन के चाचा ने यह हालत महात्मा जी से कही और महात्मा जी ने हुजूर महाराज से रात को सवाल निवेदन किया। हुजूर महाराज ने बड़ी कृपा की और दूसरे दिन सवेरे महात्मा जी को लेकर उन सज्जन के घर खुद पहुंचे। एक चारपाई पर बैठ गए। लाला जी को भी अपने पास बिठा लिया। आप कुछ देर तक उन सज्जन को देखते रहे और फिर कहा, पुत्तूलाल इस शख्स के मुकाम कल्प पर तवज्जो डालो और फिर वहां से आज्ञा चक्र पर ले जाओ और ब्रह्मांड यानी त्रिकुटी के मुकाम पर ले जाकर इसको मिला दो। महात्मा जी ने आंखें बंद कर ली, तवज्जो देना शुरू किया। थोड़ी देर बाद हुजूर महाराज ने भी आंखें बंद कर ली और स्वयं भी उस तवज्जो में शामिल हो गए। एक घंटे तक यही हालत रही और ऐसे ही तवज्जो देते रहे। बाद को दोनों सज्जनों ने आंखें खोल ली। उन सज्जन को भी होश आ गया। उन्होंने दोनों महापुरुषों को पहचान लिया और प्रणाम किया। हालत ठीक हो गई। महात्मा जी हुजूर महाराज की आज्ञा से प्रतिदिन 10-12 दिन तक उनको तवज्जो देने जाते रहे और तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उन सज्जन ने बात को हुजूर महाराज से उपदेश लिया और उनकी शरण ली। ये बात यह थी कि जब अभ्यासी मन का अभ्यास शुरू करता है और उसका मन एकाग्र होने लगता है, उस वक्त जो ख्याल अभ्यास की हालत में आता है वह बहुत गहरा असर करता है, बाद में स्थूल रूप धारण कर लेता है। ये सज्जन जब मन का अभ्यास कर रहे थे, एक जगह बाजारी औरतों का गाना सुनने चले गए। वक्त अभ्यास वही बातें ख्यालात उनके बार बार सामने आती रही और बाद में उसने स्थूल रूप धारण कर लिया। ये बुरा परिणाम उस थोड़ी देर के कुसंग का था। अद्भुत दर्शन। एक बार हुजूर महाराज और महात्मा जी टहलने के लिए फरुखाबाद फतेहगढ़ वाली सड़क पर गए। महात्मा जी अपनी तमाम सांसारिक चिंताओं के विषय में रास्ते भर निवेदन करते जा रहे थे और हुजूर महाराज उनको बड़े ध्यान से सुन रहे थे। रास्ते में एक पुल पड़ा। दोनों महापुरुष उस पर बैठ गए। अचानक हुजूर महाराज भक्ति के आवेश में आ गए। दिल में प्रेम का समुन्दर उमड़ आया। आपने बड़ी मोहब्बत से अपना सीधा हाथ महात्मा जी के कंधे पर रख दिया और कहा, भाई बड़े भाग्यशाली हो, परम पिता परमात्मा के प्यारे हो। तुमने बहुत सस्ते दामों ये सबसे बड़ी नियामत प्राप्त कर ली जिसका कोई मूल्य नहीं है। इसके बाद कहा, पेड़ों को देखो, महात्मा जी कहा करते थे कि एक अजीब दृश्य सामने था, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर फैला हुआ था, जिसमें एक अजीब खिंचावट थी और आनंद था जो वर्णन में नहीं आ सकता। सारी सृष्टि, घर दीवार, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि उसी प्रकाश में नाचते से मालूम हो रहे थे। अजब मस्ती थी जो सब पर छाई हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि यह प्रकाश ही सबकी जान और असल जीवन है और यही सबका लक्ष्य है, बाकी धोखा है। महात्मा जी ने पूछने पर यह हालत अपने गुरुदेव से निवेदन की। आपने कहा, शुक्र है कि ये रास्ता गलत साबित नहीं हुआ, यही तुम्हारी असल है और यही तुम्हारा लक्ष्य है, इसी में अपने आप को लय कर दो, फना कर दो। मैं अब तुम्हारे पीछे हूँ और पुष्ट पनाही हूँ, सामने आना गुस्ताखी है। महात्मा जी कहा करते थे कि जब मैं सैर के लिए जा रहा था तो दुनिया मेरे ऊपर चढ़ी थी और साथ थी, और जब मैं वापस हुआ तो दुनिया सदा सदा के लिए मुझसे छूट गई। सारी सांसारिक चिंताएं और वासनाएं सदा के लिए जाती रहीं और उनकी जगह परमात्मा के प्रेम ने ले ली। एक बार हुजूर महाराज बीमार हो गए। जब फरुखाबाद में आराम की सूरत न देखी तो कानपुर चले गए और वहां रहकर इलाज शुरू कराया। महात्मा जी हर शनिवार की रात फरुखाबाद से कानपुर जाते, दिन भर रहकर इतवार की रात की गाड़ी से फिर वापस आते और दफ्तर को चले जाते। फरुखाबाद स्टेशन को जाने वाली सड़क पर एक मुसलमान सूफी शाह साहब रहते थे, जिनके काफी शिष्य थे। इन शाह साहब ने कुछ सिद्धियां ऐसी हासिल कर ली थी, एक सिद्धि ऐसी थी जिस किसी से हाथ मिलाते या गले मिलते तो अपनी इच्छा शक्ति से उसकी निस्बत गुरु शिष्य का आत्मिक संबंध खींच लेते और बात को बहुत परेशान करते। दूसरे ऐसा भी कहा जाता है कि उनको ये भी सिद्धि थी कि दूर देश में बिना सवारी के थोड़े समय पहुंच जाते थे। आप अक्सर हुजूर महाराज की सेवा में पधारा करते थे। उनकी कृपा दृष्टि महात्मा जी पर देखकर कहा करते थे कि आप आध्यात्म विद्या हिंदू काफिरों को न सिखाया कीजिए, ये ठीक नहीं है, ये इसके पात्र नहीं है। हुजूर महाराज सुनकर मुस्करा देते। एक रोज हुजूर महाराज रेलगाड़ी से कानपुर जा रहे थे, फरुखाबाद स्टेशन पर शाह साहब मिल गए। गाड़ी चल दी और शाह साहब फरुखाबाद स्टेशन पर टहलते रहे। गाड़ी फतेहगढ़ पहुंची, देखा तो शाह साहब फतेहगढ़ स्टेशन पर मौजूद और टहल रहे हैं। आप हुजूर महाराज के पास आकर बातें करने लगे, मानो ये बतलाना चाहते थे कि मैं ये चमत्कार जानता हूँ। गाड़ी फतेहगढ़ से चली और कमालगंज पहुंची, वहां भी शाह साहब प्लेटफॉर्म पर टहलते मिले। आप फिर हुजूर महाराज के पास आकर बातें करने लगे। हुजूर महाराज ने कहा, शाह साहब ये क्या खेल मुझे दिखा रहे हो, ये हरकत फकीरों को शोभा नहीं देती, अब आप अगले स्टेशन पर पधारें। लेकिन अगले स्टेशन पर शाह साहब के दर्शन नहीं हुए और वो सिद्धि सदा के लिए जाती रही। इसके कारण शाह साहब दिल में बहुत रंजिश मानने लगे थे। बाहरी तौर पर बराबर मिलते रहे और मौके की तलाश में रहे कि इसका बदला लूं। श्रीमान लाला जी शाह साहब का बहुत आदर करते थे। एक शनिवार को महात्मा जी उस सड़क से जहां पर शाह साहब रहते थे स्टेशन को जा रहे थे, दूसरी ओर से शाह साहब अपने शिष्य को लिए चले आ रहे थे। महात्मा जी को देखकर खुशी जाहिर की और अपने शिष्यों से कहा, यही वो हिंदू सज्जन हैं जिन पर सूफी साहब हुजूर महाराज बहुत कृपालु हैं और बड़े प्रेम से रखते हैं। यह कहकर महात्मा जी को प्रेम से गले लगा लिया, लेकिन उनकी मंशा यह थी कि आपकी निस्बत खींच लें। महात्मा जी इन हथकंडों से बिल्कुल नहीं जानते थे। आप अपने गुरुदेव के ध्यान में मग्न गले मिलकर स्टेशन पहुंचे और गाड़ी में बैठकर कानपुर उनकी सेवा में पहुंचे। उधर उसी समय से शाह साहब के दिल में दर्द का दौरा शुरू हो गया। बड़ी तकलीफ थी, किसी भी करवट चैन नहीं था। एक एक करके फरुखाबाद के सभी हकीम डॉक्टर इलाज के लिए बुलाए गए, लेकिन दर्द कम न होता था और न हुआ। रात भर यही हालत रही और बड़ी मुसीबत से रात कटी। दूसरे रोज भी यही हालत रही। मजबूर होकर शाह साहब ने अपने प्रियजनों और शिष्यों से कहा कि यह कोई रोग नहीं है और न ही इसका इलाज डॉक्टरों के पास है। मुझको जिस तरह से मुमकिन हो कानपुर हुजूर महाराज के यहाँ पहुँचा दो, वरना यह दर्द मुझको मार डालेगा। शिष्य लोग उनको कानपुर हुजूर महाराज के पास ले गए। महात्मा जी उस समय किसी काम से बाजार गए हुए थे। हुजूर महाराज ने शाह साहब के हाल पर बहुत कृपा की, आराम से बैठाया, कुशल पूछने के बाद वहां आने का कारण पूछा। शाह साहब ने सही हाल को छुपाते हुए कहा, मैंने आपके सुपुत्र को प्रेम के नाते गले लगाया था, लेकिन उन्होंने गले मिलते समय मेरी निस्बत सलब कर ली, उसी वक्त से मेरे सीने में दर्द है। हुजूर महाराज ने आश्चर्य करके कहा, मुझको आशा नहीं है कि आज ही ऐसी देर ही आज ही में ऐसी देर कर दी तो आप यहाँ पधारे, अभी बाजार से वो आज वापस आता है। इसने मेरे दादाजी ने कहा बात मुझे। हुजूर महाराज ने कहा, बेटे पुत्रदार, तुमने आज की निस्बत क्यों सल कर ली? महात्मा जी ने नम्रता से प्रतिबद्ध किया, मुझको तो कुछ मालूम ही नहीं है और मैं भाई हमारी जानता हूँ। हुजूर महाराज ने शाह साहब ने कहा, आपकी निस्बत बरखुदार में नहीं, मैंने सल्व की है। आपकी निस्बत बरखुदार में नहीं, मैंने सल्व कर ली है, क्योंकि आप अजीज की निस्बत सल्व करना चाहते थे। वो बेकसूर है, कसूरवार मैं हूँ। आपकी निस्बत मेरे तकिए के नीचे रखी हुई है। शाह साहब बहुत लज्जित हुए और क्षमा चाही। हुजूर महाराज ने उनसे वादा करा लिया कि अब ऐसी शैतानी हरकतें किसी के साथ नहीं करेंगे। महात्मा जी से कहा, इनके हृदय पर तवज्जो दो, और आप स्वयं तवज्जो में शामिल हुए। बोले, तुम्हारी निस्बत अब तुम्हारे पास है। थोड़ी देर बाद शाह साहब की तबीयत ठीक हो गई और दर्द जाता रहा। आप प्रसन्नतापूर्वक फरुखाबाद वापस लौट आए और फिर कभी महात्मा जी को परेशान नहीं किया, बल्कि अब इज्जत से पेश आने लगे। एक दफा हुजूर महाराज और महात्मा जी कायमगंज से रायपुर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव पड़ता था, वहां पर बहुत से आदमी खड़े थे। हुजूर महाराज चाहते थे कि बचकर निकल जाएं, लेकिन कुछ आदमियों ने जो आपको जानते थे देख लिया और नम्रता से बुलाया, इसलिए आपको विवेश होकर जाना पड़ा। वहां एक युवती बिल्कुल नंगी खड़ी थी और कह रही थी कि मैं जिन्नों में से हूँ, इस स्त्री पर आसक्त हूँ और इसे लेकर जाऊंगा। कुछ लोग झाड़ा पुकी कर रहे थे और कुछ दवा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन सब बेकार था। सब परेशान थे और समझ में नहीं आता था कि क्या करें। आपको देखकर सब लोग हट गए, प्रार्थना करने लगे कि उनकी सहायता करें और इस मुसीबत से छुटकारा दिला दें। आपने पहले मना किया क्योंकि आप झाड़ा फूकी और इस तरह की तावीज इत्यादि के बिल्कुल कायल नहीं थे और न कभी ऐसा करते थे, लेकिन लोगों ने जब बहुत कहा तो आपने एक कागज पर कुछ लिखा और उसको लपेटा और उसको एक सिरे को लैंप पर रख दिया। कागज का जलना था कि वो युवती चिल्लाने लगी, मुझको मत जलाइए, मैं जाता हूँ और कभी नहीं आऊँगा। जिंद खुशामद करने लगा और कसम खाने लगा। आपने वो कागज बुझा दिया, युवती भी होश में आ गई और फिर कभी उसकी ऐसी हालत नहीं हुई। महात्मा जी नित्य संध्या को दफ्तर बंद होने के बाद कायमगंज से रायपुर गुरु दर्शन के लिए जाते और रात को 10 बजे वापस आते थे। रायपुर और कायमगंज के बीच 4 मील की दूरी है। उनका ये नित्य का नियम था। एक दिन बहुत जोर की वर्षा आई, चारों ओर बादल छा गए, सब और अंधेरा ही अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। अभी आप रास्ते में ही थे कि मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। आगे जाना बिल्कुल असंभव हो गया। विवश होकर आप एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष पर पत्ते भी नहीं थे जो वर्षा के पानी से बचाते। आपने अपने छोटे भाई मुंशी रघुवर दयाल जी का पकड़ के कहा, नन्हे आंखें बंद कर लो और परमात्मा का ध्यान करो, ख्याल करो कि बारिश नहीं हो रही है। आप दोनों इसी ख्याल में बैठ गए और थोड़ी देर में अपने आप से बेखबर हो गए। कुछ देर के बाद जब आंखें खोली तो क्या देखते हैं कि चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ था, लेकिन जिस जगह आप दोनों भाई बैठे हुए थे वो बिल्कुल सूखी थी। उस जगह बिल्कुल वर्षा नहीं हुई थी। जब आप दोनों सज्जन रायपुर पहुंचे तो हुजूर महाराज ने पहला प्रश्न यही किया कि तुम भीगे तो नहीं। आपने सारा हाल निवेदन किया। हुजूर महाराज ने कहा, जिस पर परमात्मा की अल्लाह की कृपा होती है, सृष्टि की शक्तियां भी उस पर खुद ब खुद कृपा करती हैं। फिर कहने लगे, तुम इस वर्षा और तूफान में भी आ गए। वर्षा और तूफान भी तुमको मेरे पास आने से न रोक सकी। तुम्हारा विश्वास और प्रेम अथाह है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। परमात्मा तुम दोनों पर सदा ही अपनी विशेष कृपा और दृष्टि रखें। एक दिन महात्मा जी रायपुर हुजूर महाराज के दर्शनों को जा रहे थे। रास्ते में गायें चल रही थी, किसी कारण से वे भड़क गईं और सब ओर से आप पर हमला कर दिया। वहां पर कोई आदमी आपकी सहायता को न था, हाथ में केवल एक कमजोर छतरी थी। मौत निश्चित थी। आपने अपना अंत समय जानकर आंखें बंद कर ली और अपने गुरुदेव का ध्यान करने लगे। आपके हाथ की छतरी एक साथ खुल गई। जब आपने आंख खोली, छतरी खुली हुई आपके हाथ में थी और गायें एक ओर को भागी जा रही थी। आपने परमात्मा को धन्यवाद दिया और अपनी राह ली। सारा हाल हुजूर महाराज से निवेदन किया। हुजूर महाराज ने कहा, उसको धन्यवाद दो, ये सब उसकी रहमत थी। हुजूर महाराज की सेवा में एक वकील साहब भी आते थे, जिनका अनुचित संबंध सेवा में आने से पूर्व एक स्त्री से हो गया था। सेवा में आने पर संबंध टूट गया, लेकिन दोनों का अकस्मात एक जगह एकांत में भेंट हो गई। संभव था कि कोई अनुचित कर्म हो जाता कि दरवाजे पर उन्होंने हुजूर महाराज को खड़ा पाया। दोनों घबरा कर अलग हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर शैतान ने आक्रमण किया और उनको ये ख्याल हुआ कि हुजूर महाराज की उपस्थिति असंभव है और ये हमारा ख्याल का नतीजा है। इस बार दोनों ने हुजूर महाराज को अपने बीच में पाया और अलग हो गए। एक बार श्रीमान महात्मा जी फतेहगढ़ से अलीगढ़ तहसील को जा रहे थे। गंगा पार होते हुए संध्या हो गई और अलीगढ़ अभी 8-10 मील था। आप बहुत घबराए क्योंकि रात अंधेरी थी, आदमी ना आदमजात, सुनसान गंगा का मैदान। आपने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। क्या देखते हैं कि एक वृद्ध पुरुष आगे आगे चले जा रहे हैं। आपका साहस बन गया। आप उन वृद्ध के पीछे पीछे अलीगढ़ तक चले आए। अलीगढ़ के पास आने पर वह दृष्टि से ओझल हो गए। महात्मा जी कहा करते थे कि एक तहसीलदार साहब कायमगंज तहसील में बदल कर आए। वे सज्जन महात्मा जी से किसी बात पर काफी नाराज हो गए। आपने नाराजगी दूर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार रही। महात्मा जी ने हुजूर महाराज से निवेदन किया। हुजूर महाराज ने साहस बढ़ाया और कहा कि जब कभी तुमको अवसर तहसीलदार साहब के सामने बैठने का मिले तो अपने सांस को उनके सांस से मिला लेना और ये ख्याल करना कि जो सांस तहसीलदार साहब अंदर ले जा रहे हैं उसमें तुम्हारा प्रेम भरा हुआ है और जो सांस बाहर निकाल रहे हैं उसमें तुम्हारी नफरत। ये ख्याल विश्वास के साथ करते रहो। यदि अवसर सामने बैठने का न मिले तो ये सोचो कि वो तुम्हारे सामने बैठे हैं और फिर ये क्रिया करो। परमात्मा चाहेगा, जरूर फायदा होगा। महात्मा जी ने उस क्रिया को किया। थोड़े ही दिनों बाद तहसीलदार साहब के विचार बदल गए और बजाय नफरत के वो बड़े बड़ी मोहब्बत से पेश आने लगे। एक हिंदू सुनार कभी कभी हुजूर महाराज के सत्संग में आ जाते थे और परमात्मा के विषय में बातचीत करते रहते थे। उनका ये ख्याल था कि परमात्मा कोई चीज नहीं है। तत्वों के मिलने से जो शक्ति पैदा होती है उसी का नाम परमात्मा रख दिया गया है। जब शरीर बेकार हो जाता है और मादी अज़ा भौतिक तत्व अलहदा अलहदा हो जाते हैं, वह शक्ति भी खत्म हो जाती है और छिन्न भिन्न हो जाती है। वरना ना कोई आत्मा है और ना कोई परमात्मा। यही दुनिया सब कुछ है, ना इससे आगे कोई है ना पीछे। ये सब ख्याली बातें हैं। हुजूर महाराज ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके विचार ना बदले। एक दिन हुजूर महाराज को उन्होंने बुलवाया। हुजूर महाराज ने देखा कि उनकी हालत बहुत खराब है और अंत समय है। वे सज्जन हुजूर महाराज से कहने लगे कि जब मुझको अब मुझको ख्याल होता है कि कोई शक्ति अवश्य है, अब मुझको इसका कड़ा दंड मिलेगा। आपने देखा कि ये सज्जन बड़ी दुविधा में है और दुविधा बड़ी बुरी बला है। आपने कहा आप अपना ख्याल मत बदलें, उसी पर कायम रहें। आपने उनको उनको अपनी तरफ देखने को कहा। क्षण मात्र में अपनी विचार शक्ति से उनकी हालत बदल दी। वो अपने ख्याल पर मजबूत हो गए। थोड़ी देर बाद उनका देहांत हो गया और शांति के साथ प्राण छोड़े। आपकी करामतों का कहाँ तक वर्णन किया जाए। आपकी जिंदगी करामात और बरकत की जिंदगी थी। जो काम था वो करामात था, जहाँ जाते थे बरकत फैल जाती थी। ये थोड़ी सी बातें जो सेवक डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने श्रीमान लाला जी साहब को श्रीमान चाचा जी साहब की सेवा में रहकर सुनी है, लिख दी है। जनाब मौलाना फजल अहमद खान साहब हुजूर महाराज ने मौलवी अहमद अली खान साहब से बैत ली थी। उस वक्त आपकी उम्र 19 वर्ष की थी। 16 वर्ष दिन रात अपने गुरुदेव की सेवा में रहकर शिक्षा प्राप्त की और आचार्य पद भी प्राप्त की। आप स्कूल में फारसी के मास्टर थे। आप अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार सारी उम्र ब्रह्म विद्या का प्रचार करते रहे। आप बहुत खूबसूरत, स्पष्ट कहने वाले और बड़े सफाई पसंद इंसान थे। हमेशा साफ रहते और साफ और सफेद कपड़े पहनते थे। रुपया अपने पास न रखते और जो आता खर्च कर देते या किसी को दे देते। परम संत मौलवी अब्दुल गनी साहब पर विशेष कृपा थी। ये साहब खलीफा जी साहब के मंजूरे नज़र कृपा पात्र थे और चोला छोड़ते समय उन्होंने इनको हुजूर महाराज के सुपुर्द कर दिया था। मौलवी अब्दुल गनी साहब की आर्थिक दशा अच्छी थी। वे हुजूर महाराज का हर समय ख्याल रखते थे और आपकी बड़ी सेवा करते थे। एक दफा हुजूर महाराज को 50 रुपए की बड़ी जरूरत पड़ी। आपने मौलवी साहब को पत्र लिखा। मौलवी साहब ने जवाब दिया कि मैं खुद रुपया लेकर हाजिर होता हूँ। मौलवी साहब स्वयं आए और दो रोज ठहरे। ना आपने रुपया मांगा, ना अब्दुल गनी साहब ने उनको रुपए दिए। वो वापस चले गए। आप बड़े परेशान थे, जरूरत बड़ी सख्त थी और रुपया एक पास नहीं था। आपको ये सोचकर बहुत दुख हुआ कि मैंने परमात्मा का भरोसा छोड़कर एक इंसान का भरोसा किया। आप बहुत देर तक रोते रहे और परमात्मा से माफी मांगते रहे। मौलवी साहब ने घर पहुंचकर जब कपड़े उतारे और रुपये जेब में देखा तो उन्हें अपनी भूल पर बड़ा दुख हुआ। फौरन वापस आए और रुपया भेंट किया और क्षमा चाही। आपने रुपया स्वीकार किया और कहा कि ये तुम्हारी भूल नहीं थी, इससे परमात्मा को मुझको एक सबक देना मंजूर था। आपको दीन और दुनिया दोनों निस्बतें हासिल थी और इसी वजह से दुनिया वालों को आपकी सोहबत से दोनों ही फायदा पहुंचते थे। तासुब आपको छू भी न गया था। एक बार तालीम के जमाने में हुजूर महाराज एक दुकान के सामने से गुजरे, जहां पर एक मजदूर फकीर बैठा हुआ था। हुजूर महाराज ने कुछ पढ़ दिया जिससे उस मजदूर फकीर को होश आ गया। आपकी जानिब मुखातिब हुआ, गर्दन को घुमाने लगा और कुछ पढ़ने लगा। आपने ऐसा अनुभव किया कि जैसे कोई शक्ति अवधूत की तरफ बड़ी तेजी से खींच रही है। आप अपने आप को न संभाल सके, घबरा गए। ऐसी बेबसी की हालत में आपने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और फौरन ही आपको ये महसूस हुआ कि गुरु महाराज ने आपकी जगह ले ली। हालत ठीक हो गई। मजदूर साहब बराबर क्रिया करते रहे, लेकिन अब कोई असर हुजूर महाराज पर नहीं था। मजदूर साहब अपनी क्रिया करते करते थक गए। अंत में कहने लगे, मैं मजबूर हूँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे गुरु शामिल हो गए, वरना इस गुस्ताखी की सजा देता। शाम को जब आप गुरुदेव की सेवा में हाजिर हुए, खलीसा साहब ने पूछा कि आज क्या घटना हुई। हुजूर महाराज ने सब हाल सुनाया। खलीफा साहब ने आज्ञा दी कि आइंदा कभी ऐसा मत करना, फकीरों को छेड़ना ठीक नहीं होता है। एक दफ़ा हुजूर महाराज बेरोजगार थे, नौकरी के लिए कई जगह कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। मजबूरन अपने पीर मुर्शिद से निवेदन किया आपने सहानुभूति दर्शाई और कहा कि तुम पहली तारीख से नौकर हो गए। हुजूर महाराज की बात सुनकर शक हुआ कि आज तो 10 तारीख है, पहली तारीख से नौकरी कैसी। दूसरे रोज बाजार से गुजर रहे थे, पीछे से नवाब शमशाबाद की सवारी आ गई, आपको देखकर गाड़ी रोकी और अपने पास बैठा लिया। थोड़ी देर के बाद कहा, अगर खिलाफ खातिर ना हो तो मेरे लड़के को अपनी सेवा में ले लीजिए, वे पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, आप कल से उनको पढ़ाना शुरू कर दें। हुजूर महाराज ने मंजूर कर लिया और दूसरे रोज से पढ़ाना शुरू कर दिया। महीना खत्म होने पर नवाब साहब ने पहली तारीख से तनख्वाह दी। हुजूर महाराज को बहुत दुख हुआ कि क्यों अपने गुरुदेव के शब्दों पर उस वक्त अविश्वास किया। हुजूर महाराज ने एक जलसा बुलाया जिसमें बहुत से महापुरुष सभी संप्रदायों के शामिल हुए, हिंदू मुसलमान ईसाई नानक पंथी कबीर पंथी आदि। महात्मा मुंशी रघुवर दयाल जी कहा करते थे कि नौसिखिया लोगों को उस जलसे में बैठने की आज्ञा नहीं थी। जलसे में भिन्न भिन्न विषयों पर बातें होती रही थी। बाद में हुजूर महाराज ने महात्मा जी को पेश किया और कहा, अपनी तमाम उम्र में मैंने सिर्फ यह दरख्त तैयार किया है, मेरा अब आखिर वक्त है। मुझको बुजुर्गान की तरफ से यह हुक्म मालूम होता है कि अजीज पुतुलाल को इजाजत तामा देकर अपना जानशीन मुकर्रर कर दूं। आप बुजुर्गान बराए मेहरबानी बाद इम्तहान उसकी तस्दीक या तरदीद फरमाएं। सब लोग हल्के में बैठ गए। आपने महात्मा जी से फरमाया, बेटे पुतुलाल, इन साहबान को तवज्जो दो और जो सवाल करें उसका जवाब दो, परमात्मा तुमको कामयाबी दे। महात्मा जी ने तवज्जो देना शुरू किया। महात्मा रघुवर दयाल जी उस तवज्जो में साथ में मौजूद थे। आप कभी कभी कहा करते थे कि उस तवज्जो में अजीब कैफियत थी और यह हालत फिर कभी देखने में नहीं आई। पहले एक आनंद महसूस हुआ होना शुरू हुआ, दिल आहिस्ता आहिस्ता ख्यालात से खाली होने लगा और आखिर में सिवाय परमात्मा की याद के तमाम ख्याल जाते रहे। सब बुजुर्गान सिलसिला वंश के महापुरुष उस हल्के में बैठे नजर आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता प्रकाश जाहिर होना शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश था और बाकी सब चीजें नजर से गायब थी। ना अपना बदन दिखाई देता था न किसी दूसरे का ही। ये महसूस होता था कि कहीं न कहीं जमीन है, न आसमान है और न ही कोई दूसरी चीज है। सब जगह एक ही नूर था और उसमें एक अजीब कैफियत खिंचाव और आनंद था और सब उसमें मग्न थे। यह महसूस होता था कि यह नूर ही सबका असल है और सच्चा प्रियतम है। एक ही नाम की पूंज सुनाई दे रही थी और बहुत सी मेहरबानी एक ही नाम की गूंज सुनाई दे रही थी और बहुत ही सुहावनी थी और तबीयत बेकरार उस नूर से मिलकर एक हो जाने को हजार जान से चाहती थी। आंखों से आंसू जारी थे, एक अजीब हालत तीनों गुदाज द्रवित होकर रोने की थी। उसके बाद फिर हालत बदली, नूर आहिस्ता आहिस्ता नजर से गायब हो गया। न कोई दृश्य था न कोई गूंज, होश भी था बेहोशी भी आनंद भी था और कोई आनंद भी न था आलस्य भी न था। एक हल्की सी मदहोशी थी और तबीयत बिल्कुल उसमें महक थी। आँख खोलने को या उस हालत से अलहदा होने को तबीयत नहीं चाहती थी। इस हालत का बयान धर्मशास्त्र के करना मुश्किल ही नहीं बल्कि गैर मुमकिन है। यह हालत बहुत देर तक रही। हुजूर महाराज ने फरमाया, बस अब बंद करो। आहिस्ता आहिस्ता सबों ने आंखें खोल दी। सबों ने एक मुंह से महात्मा जी की तारीफ की और कहा, कमाल हासिल किया है, सतपथ तक रसाई है, रसाई ही नहीं बल्कि उसमें अपने आप को बिल्कुल फना कर लिया है। हुजूर महाराज को मुबारकबाद दी और फरमाया, आपने खूब नमूना तैयार किया है जो बिल्कुल आपका जवाब है और आपका कमाल है। इसके बाद एक महापुरुष ने पूछा, बरखुदार शुक्र किसे कहते हैं? महात्मा जी ने जवाब दिया, उस नेमतों को, उस नियामतों को जो परमात्मा ने हमें बख्शी हैं, उन्हें ठीक तौर पर धर्म शास्त्र के मुताबिक अमल करना ही शुक्र है। सब महापुरुषों ने इस जवाब पर खुशी जाहिर की और इत्मीनान फरमाया और इजाजत दी, इजाजत की तस्दीक फरमाई, पुष्टि कर दी और जलसा खत्म हुआ। हमारे सिलसिले में जब किसी महात्मा के निर्वाण का समय नजदीक आने लगता है, तब वंश के महापुरुषों के इशारे पर अपने एक या दो मुरीदों को इजाजत तामा यानी मुकम्मल इजाजत देते हैं। एक मुरीद तो उनकी मुराद या गुरुमुख होता है, अगर औलाद में से कोई इस योग्य नहीं होता है तो उसको नहीं देते हैं। इसके अलावा और शिष्यों को भी इजाजत तालीम यानी आचार्यत्व की पदवी दी जाती है, लेकिन उनको ये इजाजत नहीं होती कि वह दूसरों को मुकम्मल इजाजत दे सकें। ये सब इजाजतें लिखित होती हैं और इस ख्याल से कि इसमें गलती ना हो जाए, उसकी तस्दीक दूसरे बुजुर्ग से भी करा लेते हैं जिनको यह हक हासिल होता है कि वह उसकी तस्दीक करें या बगैर तस्दीक वापस कर दें या उसको फाड़ दें। अगर वापस कर देते हैं तो फिर दोबारा तस्दीक हो सकती है, लेकिन अगर फाड़ देते हैं तो फिर तकमीली इजाजत नहीं होती, तकमीली इजाजत ही देते हैं। बगैर तहरीरी इजाजत के तालीम देने का किसी को हक नहीं है। हुजूर महाराज ने महात्मा जी के अलावा अपने गुरु भाई परम संत मौलवी साहब मौलाना अब्दुल गनी साहब को भी इजाजत ताम माता फरमाई थी। इजाजत तालीम अन्य कई सज्जनों को दी। दोनों महात्मा जी वो मौलवी साहब एक ही उम्र वो एक ही बीमारी में गए। दोनों महात्मा जी और मौलवी साहब एक ही उम्र में और एक ही बीमारी में गए। अब हुजूर महाराज की उम्र लगभग 70 वर्ष की हो गई थी। आपको कभी कभी पतले दस्त हो जाते थे, जिसकी वजह से आपको कमजोरी अधहद थी, जीवन की आशा जाती रही थी। सब जानते थे कि अब हुजूर महाराज कुछ दिनों के मेहमान हैं। महात्मा जी बहुत रंजीदा रहते थे, एकांत में बैठकर रोया करते थे। एक रोज हुजूर महाराज ने अपने पास बुलाकर प्रेम से बैठाया और कहा, बेटे पुतुलाल परेशान मत हो, ये दुनिया फानी है, जो यहाँ आया है उसको एक न एक दिन जरूर जाना है। हमेशा नाम सिर्फ एक परमात्मा का रहता है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। अब तक तो मैं जिस्म की कैद में हूँ, अब इससे भी आज़ाद हो जाऊँगा और तुम्हारी मदद इससे भी ज़्यादा कर सकूँगा। मेरे बाद तुम अपने चचा साहब मौलवी अब्दुल गनी साहब को मेरी जगह समझना और जो तरीका बर्ताव का मेरे साथ रखा है उसी तरीके से उनको बरतना। भाइयों की तालीम पर निगाह रखना, भूले भटकों को सहारा देना, धर्म शास्त्र की सदा पैरवी करना और अपनी असल को असल में गुम कर देना। परमात्मा तुम्हारी सदैव मदद करेगा। इसके 2 रोज बाद आपकी हालत बहुत खराब हो गई। सब सत्संगी भाई मौजूद थे और रो रहे थे। आप बराबर बतलाते जा रहे थे कि अब हमारी आत्मा पैर से निकल गई, अब जिस्म के निचले हिस्से से, अब हाथों से। फिर फरमाया, अब तुम लोग अपनी आंखें बंद करके परमात्मा का ध्यान करो और उससे मेरी आखिरत के वास्ते दुआ करो। बेटे पुतुलाल, तुम मेरी आखिरत के लिए दुआ करो। सब परमात्मा का ध्यान करने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो देखा, शरीर तो मौजूद है लेकिन आत्मा उसे छोड़कर अपने परम पिता परमात्मा की गोद में जाकर लय हो चुकी थी। आपका भौतिक शरीर सन 1908 ईस्वी में रायपुर में पंच महाभूत में मिला दिया गया। रायपुर तहसील कायमगंज जिला फरुखाबाद में है, जहां आपकी समाधि अभी तक मौजूद है।